नमस्कार भारत 5 दिसंबर दिन शनिवार, मैं हूं संदीप सोनी। कैलिफोर्निया में बीते दिनों हुई गोलीबारी की घटना को एफबीआई ने चरमपंथी घटना बताया। इधर चेन्नई में उतर रहा है बाढ़ का पानी, लेकिन नजर आ रहे हैं तबाही के निशान।
बहुत सारे छात्रों से बात हुई है कई इलाकों में, उनका कहना कि हमारे सर्टिफिकेट्स खत्म हो गए हैं। कुछ छात्रों ने ये तक कहा कि अब हमें नौकरी नहीं मिलेगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री और राहुल गांधी को उप प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा जताई।
देखिए, राहुल गांधी जी बहुत पुराने और बहुत अच्छे दोस्त हमारे हैं, क्योंकि मैं समाजवादी हूं, तो मैं भी चाहूंगा कि नेताजी को भी कुछ, उनके भी सपने पूरे हों, उनके भी काम करूं, वो प्रधानमंत्री लेंगे, ये उप प्रधानमंत्री बन जाए, मैं सहमत हूं उनके साथ।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। एफबीआई का कहना है कि बुधवार को कैलिफोर्निया में हुई गोलीबारी को चरमपंथी हमला मानकर जांच की जा रही है। एफबीआई के निदेशक जेम्स कोमे ने कहा है कि ऐसे संकेत मिले हैं कि हमलावर दंपति का झुकाव कट्टरपंथ की ओर था और वे विदेशी चरमपंथी समूहों से प्रेरित थे। हालांकि कोमे ने कहा कि हमलावर दंपति के किसी बड़े नेटवर्क से जुड़े होने के कोई संकेत नहीं मिले हैं। एफबीआई उन रिपोर्टों की भी जांच कर रही है जिनमें कहा गया है कि महिला हमलावर तफसीन मलिक ने इस्लामिक स्टेट के प्रति वफादारी जाहिर की थी। सैन बर्नार्डिनो में हुए हमले में 14 लोग मारे गए थे। तेल निर्यातक समूह ओपेक की बैठक में लगातार गिर रही तेल की कीमतों के बावजूद तेल उत्पादन में कटौती न करने का फैसला लिया गया है। ओपेक सदस्य सिर्फ बाजारों पर नजर रखने पर ही राजी हो सके। पिछले 1.5 साल के मुकाबले कच्चे तेल की कीमतें आधी से ज्यादा गिर चुकी हैं। इस खबर के बाद भी तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। बीबीसी के आर्थिक संवाददाता के मुताबिक ईरान तेल उत्पादन के मामले में स्वतंत्र होना चाहता है, क्योंकि उसे अगले कुछ महीनों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में ढील मिल सकती है। संवाददाता के मुताबिक अमेरिका में शेल ऑयल का बढ़ता उत्पादन भी ओपेक के लिए चुनौती बन गया है। ओपेक के प्रवक्ता हामिद हाफिज ने कहा, अगर बात जरूरत और आपूर्ति की हो तो ये माना गया है कि गैर ओपेक आपूर्ति 2016 में घटेगी, जबकि वैश्विक मांग 13 लाख बैरल प्रतिदिन तक हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए और तेल बाजार के ग्राहकों और उत्पादकों के लिए स्थिर रखने के अपने वादे पर अमल करते हुए सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी है कि सदस्य देश अगले कुछ महीनों में होने वाले घटनाक्रम पर पैनी नजर रखें। उत्तरी इराक से मिल रही रिपोर्टों के मुताबिक करीब 150 तुर्की सैनिक टैंकों के साथ इराक में दाखिल हुए हैं और उन्हें इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले शहर मोसुल के नज़दीक तैनात किया गया है। तुर्की की समाचार सेवा का कहना है कि ये सैनिक 2 साल पहले कुर्द लड़ाकों को प्रशिक्षण देने गए सैनिकों की जगह लेने के लिए भेजे गए हैं। इराकी सरकार ने तुर्क सैनिकों की मौजूदगी को अवैध घुसपैठ बताते हुए तुर्क बलों से तुरंत वापस जाने को कहा है। वॉशिंगटन में एक अमरीकी अधिकारी ने कहा है कि उन्हें तुर्की के सैनिकों की तैनाती के बारे में जानकारी है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ये अमरीका के नेतृत्व में लड़ रहे गठबंधन की गतिविधियों का हिस्सा नहीं है। तुर्की के इराकी कुर्द समूहों से संबंध बेहतर हैं, हालांकि तुर्की सीरियाई कुर्दों को विरोधी मानता रहा है। सीरिया से मिल रही रिपोर्टों के मुताबिक राजधानी दमिश्क के नज़दीक विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके पर हुई बमबारी और रॉकेट हमलों में कम से कम 40 नागरिक मारे गए हैं। ब्रिटेन स्थित सीरिया पर नज़र रखने वाले एक समूह का कहना है कि सरकारी सेनाओं ने पूर्वी घोटा इलाके के नज़दीक 3 कस्बों पर हमले किए हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में अभिवादन स्वीकार करिए संदीप सोनी का। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे साल भर मेहनत करते हैं, परीक्षा देते हैं और फिर उन्हें सर्टिफिकेट और डिग्री मिलती है, जिसकी बुनियाद पर वो अपने भविष्य की नींव रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन चेन्नई में बाढ़ के पानी ने कई घरों में घुसकर इन डिग्रियों को लुगदी में तब्दील कर दिया है। चेन्नई के मौजूदा सूरत हाल पर होगी बात। आगे मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री और राहुल गांधी को उप प्रधानमंत्री बनाने के अखिलेश यादव के फॉर्मूले पर भी चर्चा करेंगे। कल रिलीज हुई फिल्में अच्छी हैं, बुरी हैं, कैसी हैं, इस पर सुनिए फिल्म समीक्षक की राय। समाचार पत्रों की सुर्खियां और खेल की खबरें तो होंगी ही, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। आपको याद होगा, अमरीकी राज्य कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में कुछ दिन पहले गोलीबारी हुई थी जिसमें 14 लोग मारे गए थे। पहले इसे गोलीबारी की एक आम घटना के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी FBI ने अब इसे एक चरमपंथी घटना माना है। और इसके मानने की एक वजह ये भी है कि हमले में शामिल महिला इस्लामिक स्टेट के प्रति सहानुभूति रखती थी। महिला के फेसबुक पोस्ट के हवाले से जांच एजेंसी ने इसका दावा किया है। BBC संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए दिलनवाज पाशा से।
अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी FBI का कहना है कि कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में बुधवार को ही गोलीबारी की जांच चरमपंथी हमला मानकर की जा रही है। इस हमले में 14 लोग मारे गए थे और 21 घायल हुए थे। बाद में पुलिस ने हमला करने वाली 27 वर्षीय तफशीन मलिक और उनके 28 वर्षीय पति सैयद रिजवान फारूक को भी मार दिया था। FBI के निदेशक जेम्स कोमे ने कहा है कि हमला करने वाले दंपत्ति का झुकाव कट्टरपंथ की ओर होने के संकेत मिले हैं। उन्होंने कहा कि संभवतः हमलावर विदेशी चरमपंथी संगठनों से प्रेरित थे। जेम्स कोमे ने कहा,
So far we have no indication that these killers are part of an organized larger group.
अभी तक हमें ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं कि ये हमलावर किसी बड़े संगठन से जुड़े थे या किसी चरमपंथी सेल का हिस्सा थे। इस बात के भी संकेत नहीं है कि वे किसी नेटवर्क का हिस्सा थे। हमलावरों और चरमपंथ पर हमारी जांच के केंद्र में जो लोग हैं उनके बीच ऐसा कोई संपर्क नहीं बना था जो इन्हें हमारी निगरानी में ले आता। वहीं FBI के प्रवक्ता डेविड बाउडिच ने कहा है कि उन रिपोर्टों की जांच की जा रही है जिनमें कहा गया है कि हमलावर महिला ने इस्लामिक स्टेट के प्रति फेसबुक पोस्ट में वफादारी जाहिर की थी। रिपोर्टों के मुताबिक तफसीन मलिक ने फेसबुक पर इस्लामिक स्टेट नेता अबू बकर अल बगदादी के समर्थन में एक अन्य नाम से टिप्पणी की थी। फिलहाल इस टिप्पणी को हटा दिया गया है। बाउडिच ने कहा कि हमलावर दंपति ने अपना डिजिटल डाटा नष्ट करने की कोशिश भी की थी। बाउडिच ने बताया,
We have also uncovered evidence that these subjects
हमें इस बात के भी सबूत मिले हैं कि हमलावरों ने अपने डिजिटल फिंगरप्रिंट भी नष्ट करने की कोशिश की थी। उदाहरण के लिए हमें एक नजदीकी कूड़ेदान से 2 फोन मिले हैं। इन मोबाइल फोन को तोड़ दिया गया था। हम उन दोनों मोबाइल फोन से डाटा निकालने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि उनकी डिजिटल गतिविधियों के बारे में पता चलने से उनके हमला करने के मकसद का भी पता चल सकेगा। सैन बर्नार्डिनो में हुआ हमला पिछले 3 साल का अमेरिका में हुआ सबसे बड़ा हमला है। इससे पहले 2012 में कनेक्टिकट के न्यू टाउन में एक स्कूल पर हुई गोलीबारी में 26 लोग मारे गए थे।
कैलिफोर्निया में बीते दिनों हुई गोलीबारी की घटना को FBI ने चरमपंथी घटना बताया। रिपोर्ट सुना रहे थे दिलनवाज पाशा। इधर दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में लोग दुआ मांग रहे हैं कि आगे बारिश ना हो और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। कई इलाकों में बाढ़ का पानी उतरा है और जिंदगी धीरे धीरे ही सही पटरी पर आने की कोशिश कर रही है। हमारे सहयोगी वात्सल राय ने ताज़ा सूरत हाल जानने के लिए चेन्नई में मौजूद BBC संवाददाता रविंदर बाबा से बात की।
मौसम विभाग ने चेतावनी हटा ली है। उन्होंने कहा है वर्षा होगी लेकिन खतरा कम है। कुछ देर के लिए धूप निकलने की वजह से लोगों को राहत मिली थी कि उनकी हालात पहले के मुकाबले अब वो कम से कम बाहर निकल सकते थे। रोजमर्रा की जो जीवन की सामान जुटाने के लिए लोग जो पिछले कुछ दिनों से खा नहीं पाए थे या जो भी उनके घरों में था उसी के सहारे जी रहे थे, वो बाहर निकल के सामग्री खरीदने के लिए बाजारों में नजर आए, दुकानें खुली। कुछ हद तक लग रहा था कि जीवन सामान्य हो रहा है लेकिन उसके बावजूद वापस एक तरह से डर लोगों में आ गया है कि कहीं फिर पानी न बढ़ जाए।
बारिश की वजह से लोग डर तो रहे हैं, साथ में राहत का काम भी तो प्रभावित हो रहा होगा।
राहत का काम पुरजोर चल रहा है। जो राहत कर्मियों को NDRF को सेना को वायु सेना को और मेहनत करनी पड़ सकती है अगर पानी का जो स्तर है वो बढ़े, लेकिन जिस तरह से स्तर घटा है 5 से 6 फीट की वजह करीब 1.5-2 फीट का पानी का स्तर है कई इलाकों में, लेकिन कई इलाकों में पानी पूरी तरह नीचे चला गया है।
बारिश का जहां ज्यादा असर हुआ है उन इलाकों में जरूरी सामानों की भी किल्लत बताई जा रही थी, क्या वहां तक वो सामान पहुंच पा रहे हैं रोजमर्रा की जिंदगी के?
ये देखने को मिल रहा है कि जैसे पेट्रोल पंप है उस पर भीड़ ज्यादा है, लोगों की कतारें लगी हुई हैं, लोग बोतलों में पेट्रोल लेकर के जा रहे हैं। जहां तक दूध है, दूध काफी महंगा बिक रहा है कई इलाकों में। जहां की सब्जी सड़ने का जिनका डर होता है उनके भी दाम बढ़े हुए हैं और उनकी भी अभी अच्छी क्वालिटी मिल नहीं पा रही है, लेकिन फिलहाल जिन जिन इलाकों में सामान इतनी आसानी से नहीं मिल रहा वहाँ दाम ज्यादा हैं। रिलीफ वर्कर्स खाना बना बना के गाड़ियों में लाद करके बांटते हैं और लोगों में लड़ाई भी हो रही है। कई लोगों ने शिकायत की है कि उन तक राहत सामग्री नहीं पहुंची, उनको खाना नहीं मिला। बहुत सारे छात्रों से बात हुई है कई इलाकों में, उनका कहना कि हमारे सर्टिफिकेट्स खत्म हो गए हैं। कुछ छात्रों ने ये तक कहा कि अब हमें नौकरी नहीं मिलेगी, आज की तारीख में हम एक अनपढ़ के बराबर हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं, अभी इसके बारे में सरकार को गौर से सोचना होगा।
चेन्नई में बारिश और बाढ़ ने कई छात्रों की डिग्रियों को लुगदी में तब्दील कर दिया, लेकिन आशा से आकाश बंधा है। ये तो हुई बात चेन्नई की, लेकिन सियासत का आकाश सिर्फ उम्मीद से नहीं बनता, बल्कि उसके लिए सियासी पांसे फेंके जाते हैं, जो कभी सोच समझकर तो कभी यूं ही बिना बिसात के भी मोहरों को आगे बढ़ा दिया जाता है। एकदम ताज़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का है। पूरी रिपोर्ट सुनिए अमल चौधरी से।
बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में महागठबंधन जैसे प्रयोग की संभावना तलाशने में जुटी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के साथ गठबंधन का फॉर्मूला पेश किया। अखिलेश का कहना है कि कांग्रेस अगर समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश करती है तो गठबंधन हो सकता है। उन्होंने कहा,
देखिए राहुल गांधी जी बहुत पुराने बहुत अच्छे दोस्त हमारे हैं, क्योंकि मैं समाजवादी हूँ तो मैं भी चाहूंगा कि नेताजी को भी कुछ उनके भी सपने पूरे हों, उनके भी काम करूं, वो प्रधानमंत्री लेंगे, ये उप प्रधानमंत्री बन जाए, मैं सहमत हूं उनके साथ, मैं सहमत हूं, मैं अभी गठबंधन बना दूंगा। मैंने कहा कि नेताजी प्रधानमंत्री बन जाए, आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, मैं अभी तैयार हूं उनके लिए।
राहुल गांधी ने अखिलेश के सुझाव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता प्रदीप माथुर ने कहा कि फिलहाल पार्टी अकेले चलने की नीति में यकीन कर रही है।
देखिए अभी 2019 बहुत दूर है और अभी तो 2017 के चुनाव होने हैं, तो ये अखिलेश जी का व्यू पॉइंट हो सकता है। हमारी पार्टी ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा है, अभी तो हमारी पार्टी चल अकेला में विश्वास कर रही है, पार्टी को मजबूत कर रही है, जनता को यह आभास हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कलाई खुल चुकी है। समाजवादी पार्टी के समय में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, बसपा का जंगल राज लोग देख ही चुके हैं। राहुल जी और सोनिया जी के नेतृत्व में यदि हम मेहनत करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की वापसी हो सकती है।
सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ भी मानते हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में बिहार जैसा गठबंधन बनाना आसान नहीं होगा। वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान का कहना है,
ये बिल्कुल हकीकत है कि वो चाहते हैं। सबसे पहले उन्होंने इसी तरीके का एक शगुफा छोड़ा था मायावती के साथ मिल जाने का, बड़ी इजीली लोगों ने समझ लिया, एक सिस्टमैटिक तरीके से एक रूमर छोड़ा गया था कि इन दोनों का जिस तरह से बिहार में हुआ है वैसे यहाँ भी महागठबंधन हो जाएगा। फौरन उसका जवाब मायावती की तरफ से आ गया कि नामुमकिन उनकी, क्योंकि मुलायम चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन जिनको पार्टनर बनाना चाहते हैं वो कहां तक राजी होंगे ये इसमें बहुत शक है।
बिहार चुनाव के नतीजे आते ही जब समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की बात की तो बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने मुलायम सिंह यादव की पार्टी के साथ किसी भी तरह के गठजोड़ की संभावना से साफ इनकार कर दिया। अब कांग्रेस की ठंडी प्रतिक्रिया से लगता है कि समाजवादी पार्टी के लिए चुनावी मैदान का साथी खोजना बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।
अमल चौधरी की इस रिपोर्ट के बाद बात इंद्रप्रस्थ की, जिसे दुनिया अब दिल्ली के नाम से जानती है, जहां आसमान पर बीते कुछ दिनों से छाई धूल और धुएं की परत ने प्रदूषण से मुक्ति पाने के नए तरीके आजमाने पर सरकार को एक तरह से विवश कर दिया है। अधिक जानकारी के साथ सलमान रावी।
देश की राजधानी में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण की चिंताओं के बीच दिल्ली की सरकार ने बदरपुर थर्मल पावर प्लांट को बंद करने का फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद शुक्रवार को दिल्ली सरकार की आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें यह भी तय किया गया कि अब महानगर में सम और विषम नंबरों की गाड़ियां चलेंगी। सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव एनएन शर्मा का कहना था कि अब सड़कों को भी वैक्यूम क्लीनर से साफ किया जाएगा।
ये सेस किया गया है कि डस्ट जो है सिर्फ रोड की ही इमीडिएट पोर्शन से नहीं आ रही है, बल्कि जो कच्चा पोर्शन है उससे भी आ रही है। उसके लिए एक मैसिव ग्रीनिंग प्लान जो है हॉर्टिकल्चर का और अर्बन फॉरेस्ट्री का, वो PWD शुरू करेगी। वी विल इम्प्लीमेंट फॉर सम टाइम ऑड एंड इवन नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑपरेशन बिगिनिंग फ्रॉम
दिल्ली के मुख्य सचिव ये भी कह रहे थे कि जल्द ही सड़कों पर से वाहनों को कम करने की दिशा में सम और विषम नंबरों के वाहनों को चलने की अनुमति दी जाएगी, यानी एक दिन सिर्फ सम नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी तो एक दिन सिर्फ विषम नंबरों वाली। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अपनी अलग रणनीति बनाई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के विशेष आयुक्त मुक्तेश्वर चंद्र ने बीबीसी से बात करते हुए कहा
कि जो विजिबली पॉल्यूटिंग व्हीकल है, जो दिखाई दे रहा है कि जिसमें से काफी धुआं निकल रहा है, तो ऐसी गाड़ियों को हम रोक के तुरंत उसका चलान करते हैं। जो भी गाड़ी जो दिखाई तो नहीं दे रही है लेकिन उसके पास पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होना चाहिए मैंडेटरी तौर पे, वो उसके पास नहीं है, तो जब हम विदाउट हेलमेट का चलान कर रहे हैं, विदाउट सीट बेल्ट का चलान कर रहे हैं, तो साथ में ये भी देखते हैं कि क्या उसके पास पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है। अगर नहीं है तो वो धारा भी उसमें ऐड कर दी जाती है।
पर्यावरण और प्रदूषण के लिए काम करने वाली गैर सरकारी संस्था सीएसई ने अपनी हाल की रिपोर्ट में कहा है कि सिर्फ 2 महीनों के अंदर ही दिल्ली में वायु प्रदूषण में 7 गुना बढ़ोतरी हुई है। संस्था की शोधकर्ता अनुमिता राय चौधरी कहती हैं,
देखिए अभी जो मात्रा है वो मानक से कई गुना ज्यादा है, और अगर आप अक्टूबर 1 से कंपेयर करें कि तब से जो अब जो बढ़ोतरी हुई है वो भी 7 गुना ज्यादा। जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार जिसको हम सीवियर पोल्यूशन लेवल डे कहते हैं, अक्टूबर के महीने में 3% दिन हमने सीवियर देखा, पर नवंबर में आते आते वो 73% हो चुका है।
वहीं ग्रीन पीस इंडिया नाम की एक दूसरी संस्था ने हाल ही के शोध के बाद बताया कि शहर के स्कूलों में भी वायु प्रदूषण काफी भयावह स्तर पर पहुंच चुका है, और यही वजह है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका काफी खराब असर पड़ रहा है। बढ़ रहे वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली की सरकार राजधानी से लगे हुए दादरी के इलाके में स्थित एक और विद्युत ताप घर को बंद करवाना चाहती है। दिल्ली की सरकार का कहना है कि वो इस बारे में उत्तर प्रदेश की सरकार से बातचीत कर रही है। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
बीबीसी इंडिया बोल।
क्या नेपाल संकट के लिए भारत जिम्मेदार है? भारत से नेपाल जाने वाले सामान की सप्लाई महीनों से बंद है। नेपाल के लोग अनाज, पेट्रोल और दवाओं के लिए तरस रहे हैं। वो कहते हैं कि भारत जानबूझकर ब्लॉकेट कर रहा है, पर भारत इसका खंडन करता है। आपकी राय क्या है? क्या वाकई नेपाल को सजा दे रहा है भारत? इस बार बीबीसी इंडिया बोल में इसी विषय पर बातचीत होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
5 दिसंबर दिन शनिवार, बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। वक्त हुआ है 6:46 और ये हो गए हैं पूरे 47 मिनट, और अब समय है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। दिलनवाज पाशा अखबारों का बंडल लेकर स्टूडियो में आ चुके हैं।
जी पर कल हमने बताया था दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी, जिसमें कहा गया था कि सांस लेने लायक नहीं रही है दिल्ली, और इसी के बाद दिल्ली सरकार ने त्वरित फैसले लेते हुए कई कड़े कदम उठाने की बात कही, जिसमें शायद सबसे कड़ा कदम ये है कि दिल्ली में अब गाड़ियां सभी दिन सड़कों पर नहीं चल पाएंगी, आधे दिन ही सड़कों पर उतरेंगी। इस खबर पर
दिल्ली के नंबर वाली गाड़ियां
सिर्फ दिल्ली की बात है। जनसत्ता लिखता है ताकि सांस लेने लायक बन सके दिल्ली, और अमर उजाला का इसी पर शीर्षक है कि आधे दिन सड़कों पर नहीं चल सकेंगी गाड़ियां। एक और खबर जो सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है वो चेन्नई की बाढ़ से जुड़ी है। वहां एक अस्पताल में आईसीयू में पावर चले जाने से 18 मरीजों ने दम तोड़ दिया है, दर्दनाक खबर है। ये भी सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। और कल अंग्रेजी अखबार द हिंदुस्तान टाइम्स के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि यदि मुलायम सिंह यादव को पीएम कैंडिडेट बनाया जाए तो राहुल गांधी अच्छे डिप्टी सीएम होंगे, और ये खबर लगभग सभी अखबारों के
डिप्टी सीएम नहीं
डिप्टी पीएम
उप प्रधानमंत्री
जी, जो कभी लाल कृष्ण आडवाणी हुआ करते थे। और ये खबर लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। जिक्र करूंगा दैनिक भास्कर की एक खास खबर का, जिसके मुताबिक महाराष्ट्र के 5 गांवों में दूल्हा दुल्हन शादी से पहले एक रस्म और निभानी होगी, और वह है एचआईवी टेस्ट पास करना, यानी एचआईवी टेस्ट पास किए बिना इन 5 गांवों में शादी नहीं होगी। अमर उजाला की एक खबर के मुताबिक वेटिंग टिकट वाले भी अब बेटिकट माने जाएंगे। रेल का किराया कई बार बढ़ चुका है, प्लेटफॉर्म टिकट बढ़ चुका है, और कैंसिलेशन चार्ज बढ़ चुका है, और अब वेटिंग टिकट वालों के लिए नए नियम आने वाले हैं। पेरिस में सम्मेलन चल रहा है जलवायु परिवर्तन को लेकर, और इसी बीच बिल गेट्स ने सोलर एनर्जी और विंड पावर को लेकर शंका जाहिर की है।
बहुत शुक्रिया दिलनवाज पाशा। और इससे पहले कि हम खेलों की दुनिया में चलें, कल रिलीज हुई फिल्मों के बारे में बात करते हैं। सुनते हैं कल कौन सी फिल्में रिलीज हुई हैं।
इस हफ्ते की दोनों रिलीज एंग्री इंडियन गॉडेसेस और हेट स्टोरी 3 दोनों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बैनर्जी। अर्णब, सबसे पहले तो हम बात एंग्री इंडियन गॉडेसेस की करेंगे। आखिर क्यों एंग्री हैं ये गॉडेसेस?
पैन नलिन की मैंने पहली भी फिल्म देखी हुई है और वो ठीक ठाक फिल्म थी। फिल्म 5 दोस्तों की कहानी है। एक दोस्त है जो गोवा में रहती है, वो फोटोग्राफर है और वो अपने दोस्तों को फोन करके कहती है कि वो उनको सरप्राइज देना चाहती है और सबको अपने ही गोवा में घर में बुला लेती है। पांचों जो दोस्त हैं उनके साथ एक उसकी एक मेड भी है और एक उसकी एक और फ्रेंड है जो एक्टिविस्ट है, वो कहीं ना कहीं सताई हुई है। यानी जो मेल है, यानी जो पुरुष उनके जीवन में आए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं उनको एक्सप्लॉइट किया है, फायदा उठाया है, जिसकी वजह से वो ना खुश हैं। तो यहाँ पे वो सिर्फ आपस में कुछ सुख दुख शेयर करना चाहती हैं, जहाँ उन्हें कोई मर्द नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से एक फ्रेश कहानी थी।
कहानी का जो मैसेज है विमेन बॉन्डिंग का, वो निकल कर आता है या बेचारी सताई हुई सी औरतें ही नजर आती हैं स्क्रीन पर?
नहीं, बिल्कुल भी सताई हुई नजर नहीं आती। यही सबसे बड़ी खूबी है फिल्म की। जो फ्रेशनेस है राइटिंग से आई है, जो राइटिंग है, पैन नलिन तो है ही, उनका तो योगदान है ही, साथ में जितनी एक्ट्रेसेस है उन्होंने अपनी अपनी लाइन खुद लिखी है और जो भी वो जिस तरह का किरदार कर रही है, जिसके वजह से एक नवीनता रहती है पूरी फिल्म की कथानक में।
तो अर्णव, कितने मार्क्स देंगे आप
एंग्री इंडियन गॉडेसेस को? मैं 5 में से 3 दूंगा।
तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है।
और अब बात हेट स्टोरी 3 की। हेट स्टोरी सीक्वेंसेस के जो फॉलोअर्स रहे हैं, क्या उन्हें ये हेट स्टोरी 3 पसंद आएगी या पहली वाली ज्यादा बेटर थी?
देखिए, पहली वाली हमेशा कुछ अच्छी लगती है। फिल्म में बहुत सारे ट्विस्ट हैं, इसमें प्रियांशु चैटर्जी भी हैं जो बहुत दिनों बाद नजर आए हैं। हर मोड़ पे एक ना एक ट्विस्ट है जिसकी वजह से दिलचस्प बनी रहती है। लेकिन सेकेंड हाफ के बाद, खासतौर से जब पूरी कहानी अनफोल्ड होती है, उसके बाद से बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाता है। जो हम फिल्में देखते हैं या जिन्होंने हेट स्टोरी भी देखी है, उनको ये पता लग जाता है कि अब क्या होने वाला है।
शर्मन जोशी को पहली बार इस तरह की फिल्म करते हम देख रहे हैं। एक्टिंग का उनका स्कोप रहा इस फिल्म में या एक्टिंग करने को मिली ही नहीं?
सिर्फ शर्मन जोशी नहीं, जरीन खान एक नए अवतार में आई हैं। करण सिंह ग्रोवर जो टेलीविजन के एक्टर रहे हैं, उनको एक बहुत अच्छा कैरेक्टर मिला है इस फिल्म पे। मुझे लगता है कि बहुत कुछ उनका करियर टिका हुआ है। जरीन खान सिर्फ कैटरीना कैफ लुक अलाइक नहीं है, ये प्रूव करने की कोशिश करने में लगी हुई है। शर्मन जोशी एक बहुत ही दिलचस्प कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, यानी वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है और बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है। इस तरह का कैरेक्टर उन्होंने नहीं किया है। करण ग्रोवर एक नए किरदार में आए हैं, ऐसा रोल उन्होंने नहीं, मेरे ख्याल से टीवी पे भी नहीं किया है। तो तीनों का जो कैरेक्टर है बिल्कुल नए तरीके का है और शर्मन जोशी ने उसको बखूबी निभाया भी है।
तो अर्णब, हेट स्टोरी 3 को कितने मार्क्स देंगे आप?
मैं हेट स्टोरी को 5 में से 2 दूंगा।
फिल्म समीक्षक अर्णब बनर्जी से बात कर रही थी राखी शर्मा। और फिल्मों की दुनिया से सीधे चलते हैं खेल के मैदान पर।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत क्रिकेट से।
Here's another one. Oh, he missed that badly, but manages to hold on. He knows it. He's been very lucky there.
दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में खेले जा रहे तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच के दूसरे दिन कल दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी केवल 121 रन पर सिमट गई, जबकि इससे पहले भारत की पहली पारी 334 रनों पर समाप्त हुई। पहले दिन 89 रन बनाकर नाबाद रहने वाले भारत के अजिंक्य रहाणे ने कल अपने टेस्ट करियर का 5वां और भारत में पहला शतक जमाते हुए 127 रन बनाए, जबकि पहले दिन 6 रन बनाकर नाबाद रहने वाले आर अश्विन ने भी कल 56 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। रहाणे और अश्विन के बीच 8वें विकेट के लिए 98 रनों की साझेदारी भी हुई। इस साझेदारी ने साबित कर दिया कि विकेट पर अगर धैर्य से बल्लेबाजी की जाए तो वहां टिका भी जा सकता है और रन भी बनाए जा सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज काइल एबट ने 40 रन देकर 5 और स्पिनर डेन पीट ने 117 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। इसके बाद जब दक्षिण अफ्रीकी टीम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरी तो जब पहले विकेट के लिए 36 रनों की साझेदारी हुई तो लगा कि शायद अफ्रीकी टीम इस बार कुछ दमखम दिखाएगी, लेकिन रविंद्र जडेजा की घूमती गेंदों के सामने उनका दम फूल गया और परिणाम वही ढाक के 3 पात। पूरी अफ्रीकी टीम 49.3 ओवर में ही 121 रन पर ढेर हो गई। केवल एबी डिविलियर्स ही 42 रन बनाकर कुछ संघर्ष कर सके। रविंद्र जडेजा ने 30 रन देकर 5 और आर अश्विन ने 26 रन देकर 2 तथा उमेश यादव ने भी 32 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। दोनों टीमों की ओर से पूरी सीरीज में पहला शतक बनाने वाले अजिंक्य रहाणे ने मैच के बाद बताया कि टीम ने दक्षिण अफ्रीका को फॉलो ऑन नहीं देने का फैसला किया है।
पहली सेंचुरी मेरी इंडिया में मेरे लिए बहुत स्पेशल है और फॉलो ऑन नहीं करा है, ये पूरे टीम मैनेजमेंट कैप्टन उन्होंने डिसाइड किया कि क्या डिसीजन होगा।
वैसे भारत के पास पहली पारी के आधार पर 213 रनों की बढ़त है। और अब बात बैडमिंटन की। मकाऊ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट लगातार तीसरी बार अपने नाम करने के बाद भारत के पीवी सिंधु की जीत का सिलसिला इंडोनेशियन मास्टर्स में कल टूट गया। महिला एकल वर्ग के फाइनल में शीर्ष वरीयता के साथ खेल रही पीवी सिंधु को कल क्वार्टर फाइनल में गैर वरीयता हासिल चीन की ही जिंग जियाओ ने 23-21-21-13 से मात दी, लेकिन पुरुष एकल वर्ग में भारत के श्रीकांत सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रहे। शीर्ष वरीयता के साथ खेल रहे के श्रीकांत ने कल क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के टिक सही सू को केवल 24 मिनट में ही 21-10-21-5 से हराकर बाहर का रास्ता दिखाया। और अब बात हॉकी की। रायपुर में खेले जा रहे हॉकी वर्ल्ड लीग फाइनल्स में आज भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में बेल्जियम का सामना करेगी। इससे पहले शुरुआती चरण में भारतीय टीम ने बेहद निराशाजनक खेल दिखाया और पहले ही मुकाबले में उसे अर्जेंटीना से 3-0 से हार का सामना करना पड़ा। अगले मुकाबले में भारत ने जैसे तैसे जर्मनी को 1-1 से बराबरी पर रोका, लेकिन तीसरे मुकाबले में उसे नीदरलैंड से 3-1 से मात मिली। इसके बाद क्वार्टर फाइनल में भारत का सामना ब्रिटेन से हुआ और भारत ने चमत्कारी खेल दिखाते हुए ब्रिटेन को 2-1 से हराया। भारत के लिए वीआर रघुनाथ और तलविंदर सिंह ने 1-1 गोल किया। भारत के लिए बेहतरीन रक्षण का काम करने वाले वीरेंद्र लाकड़ा को मैन ऑफ द मैच चुना गया।
बहुत खुश हो और पूरे टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस किया और काफी टफ मैच था, फिर भी हम लोग ने काफी इम्प्रूव किया इस मैच में।
अब देखना है कि 2 हार के बाद 1 जीत के सहारे सेमीफाइनल में पहुँचने वाली भारतीय टीम कैसा खेल दिखाती है। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
और अब बात देश दुनिया की उन खबरों की जिन पर रहेगी हमारी नजर।
कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में हुए हमले की जांच कर रही एफबीआई ने इसे चरमपंथी हमला माना है। इस घटनाक्रम से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ग्रीस की संसद 2016 के लिए बजट पर आज मतदान करेगी। ये बजट इसी साल जुलाई में हुए राहत पैकेज समझौते की शर्तों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कर्ज संकट में घिरे ग्रीस की सरकार को समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं की शर्तें माननी है। पश्चिमी अफ्रीकी देश सियेरा लियोन में शनिवार से आधिकारिक जनगणना शुरू होगी। इस जनगणना को देश के इबोला से उबरने का मापदंड भी माना जा रहा है। इस बेहद अहम जनगणना में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति अर्नेस्ट बाई कोरोमा ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ पहले से तय मुलाकात को रद्द कर दिया है। और इधर भारत में आज 4वां अंतर्राष्ट्रीय दिल्ली फिल्म उत्सव शुरू हो रहा है जो 10 दिसंबर तक चलेगा। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे 4थे टेस्ट मैच का आज 3रा दिन है।
और अब कार्यक्रम के समापन से पहले प्रमुख समाचार एक बार फिर दिलनवाज पाशा से।
एफबीआई का कहना है कि वह बुधवार को कैलिफोर्निया में हुई गोलीबारी को चरमपंथी हमला मानकर जांच कर रही है। तेल निर्यातक समूह ओपेक की बैठक में लगातार गिर रही तेल की कीमतों के बावजूद तेल उत्पादन में कटौती न करने का फैसला लिया गया है। उत्तरी इराक से मिल रही रिपोर्टों के मुताबिक करीब 150 तुर्की सैनिक टैंकों के साथ इराक में दाखिल हुए हैं। सीरिया से मिल रही रिपोर्टों के मुताबिक राजधानी दमिश्क के नजदीक विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके पर हुई बमबारी और रॉकेट हमलों में कम से कम 40 नागरिक मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि उसे उत्तरी इराकी शहर सिंजार में कई सामूहिक कब्र मिलने की रिपोर्टें मिली हैं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में विस्थापितों के कैंप पर हुए हमले में 8 लोग मारे गए हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। ठीक एक घंटे के बाद 8 बजे विश्व भारती में फिर मुलाकात होगी। तब तक खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर।